ओम नमस्ते जी। 104वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभाव, तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शूद्रों को स्त्रियों को वेद पढ़ने चाहिए या नहीं, ये विषय चल रहा था। तो ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद यजुर्वेद का ही प्रमाण दे करके स्वयं ईश्वरीय वाणी को सुना करके ये बताने की चेष्टा की कि ईश्वर स्वयं चाहता है कि सभी मनुष्य वेद पढ़ें। तो शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, ये नियम है कि एक व्यक्ति शूद्र कुलोत्पन्न होकर के भी अपने पुरुषार्थ से वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। यह वैदिक व्यवस्था है। और एक ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति भी पुरुषार्थहीन होकर के अकर्मण्य होकर के मूर्ख रह सकता है और शूद्रत्व को प्राप्त हो सकता है। इसलिए जहां जहां शास्त्रों और ग्रंथकार की रचनाओं में शूद्रों के वेदाध्ययन के अधिकार का प्रतिपादन किया, वहां उसका तात्पर्य स्वत्वपरक है, और जहां जहां कहीं निषेध की बात कही गई वहां उसके तात्पर्य योग्यता परक है, ऐसा समझना चाहिए। गत श्रव्य कणिका में हमने आपको अधिकार की बात बताई थी, एक होता है स्वत्व, एक होता है योग्यता। उसी संदर्भ में ये बात रखी है, इस संस्था के द्वारा सबके इस संस्था के द्वार यानी वैदिक व्यवस्था में संस्था के द्वार सबके लिए खुले हैं, यह घोषणा होने पर भी उसमें प्रवेश पाने के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बौद्धिक स्तर आदि संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। यानी किसी स्कूल व कॉलेज में सबके लिए एडमिशन मिल सकता है, परंतु इतना होते हुए भी उसकी एक विशिष्ट योग्यता, उसकी एक विशिष्ट क्षमता, ये सब निर्धारित होता है। जाति, धर्म, लिंग आदि के बाधक न होने पर भी प्रत्येक प्रवेशार्थी को उसी योग्यता के आधार पर छोटी बड़ी कक्षाओं में प्रवेश मिलता है। अनुभवी शास्त्रकारों ने कतिपय ऐसे दोषों का निर्देश किया जो विद्याभ्यास में बाधक होते हैं। उन दोषों से रहित बालक ही विद्या ग्रहण के अधिकारी होते हैं। ईर्ष्या, असूया, चपलता, मद, मोह, उद्दंडता, असत्य भाषण आदि इस प्रकार के दोष हैं, जिनके रहते विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थी की परीक्षा लेता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता और चरित्र से आश्वस्त हो जाने पर ही उसे शिष्य रूप में स्वीकार करता है। इस विषय में मनुस्मृति में आया, विद्ययैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना आपद्यपि हि घोरायां नत्वेनामिरिणे वपेत। ब्रह्मवादी वेदाध्यापक भले ही विद्या को अपने साथ लेकर मर जाए, पर घोर आपत्ति में भी उसे ऊसर में न बोए, यानी ऊसर भूमि में न बोए, अर्थात कुपात्र को विद्या न दे। समाज में शूद्र वही है जिसमें प्रयत्न करने पर भी विद्योपयोगी गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों का वर्ग शारीरिक श्रम के लिए उपयुक्त समझा जाता है। यदि इस वर्ग में कोई विशिष्ट संस्कारी आत्मा किन्हीं निमित्तों से विद्या उपयोगी गुणों के उद्भावन में सफल हो जाए तो वह अभिलषित विद्या के लिए पूर्ण अधिकारी माना जाएगा। ब्राह्मण, शूद्र आदि पद गुणवाचक हैं, इनमें जाति अथवा जन्म प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। काठक संहिता में कहा कि ब्राह्मणस्य पितरम किमु पृच्छसि मातरम श्रुतम चेदस्मिन् वेद्यम सपिता सपितामहः। ब्रह्मसूत्र के श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च सूत्र से पूर्वोक्त सत्य यानी सरलता, ब्रह्मचर्यादि गुणों के न होने पर उस व्यक्ति के लिए वेदादि के पढ़ने, सुनने और उसके द्वारा अनुष्ठान का निषेध किया गया है। अन्य के द्वारा पढ़े जाने पर दूसरे व्यक्ति का सुनना श्रवण कहा जाता है। गुरुमुख से स्वयं पढ़ना अध्ययन है। अधीत के अनुसार यानी पढ़े हुए के अनुसार यज्ञादि विहित कर्मों का करना अर्थ कहता है। अध्ययन के अनंतर वेदादि के मनन से उसका सार और रहस्य को समझना भी अर्थ कहता है। ब्रह्म विद्या के श्रवण आदि का उन व्यक्तियों के लिए निषेध है जिनमें पूर्वोक्त दोष विद्यमान हो, यानी ईर्ष्या, असूया आदि जो दोष पहले कहे गए वो यदि किसी में हो तो उनके लिए ब्रह्म विद्या के श्रवण का निषेध है। ऐसे व्यक्तियों को विद्या का दान समाज के कल्याण का हेतु न होकर उसके अनर्थ का हेतु हो सकता है। निरुक्त में भी यही बात समझाई गई है। कितना सुंदर रूप से यह भाव स्पष्ट हो जाता है।
विद्याह वै ब्राह्मणम जगाम गोपायमा सेवदिष्टेहमस्मि असूयकायान् ऋजवे यताय नमा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम।
कहते हैं रूपक अलंकार के माध्यम से समझाया जा रहा है कि विद्या वेदज्ञ ब्राह्मण के पास आई और बोलती है कि तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी अमूल्य निधि हूं। असूया करने वाले उद्दंड और असंयमी को मुझे मत देना जिससे मैं बलवती बनी रहूं। दुष्ट जन विद्या का दुरुपयोग करके समाज को हानि पहुंचाने का कारण बनते हैं। इसी भाव को मनुस्मृति में भी कहा गया, विद्या ब्राह्मण मेत्याह सेवधितेस्मि रक्षमाम असूयकाय माम मा दास तथा स्याम वीरवत्तमा।
यही बात को इन्होंने, शब्द भिन्न है पर बात वही कही गई है, प्रकारांतर से यही बात गीता में भी आई है। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रुषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। यह अध्यात्म विषय ज्ञान ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए जो तपस्वी न हो, विद्या के प्रति आस्थावान न हो, आचार्य के प्रति सेवा भाव न रखता हो तथा जो परमेश्वर में आस्तिक बुद्धि न रखता हो। अन्य उपनिषद आदि वैदिक साहित्य में भी अनेकत्र इसी बात का प्रतिपादन हुआ है। श्वेताशतरोपनिषद में बताया, ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्रा या शिष्याय वा पुनः। अध्यात्म शास्त्रों में प्रतिपादित यह रहस्य उसे न देना चाहिए जो शांत न हो, उद्दंड हो, जो आज्ञाकारी न हो, असंयत हो तथा जो श्रद्धा न रखता हो। महानुभाव, कितनी सुंदर बात इन इस कथन में हमने जानने का प्रयास किया। तो अब प्रसंग आ रहा है महत्वपूर्ण, कन्याओं के ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन में प्रमाण। यानी ऋषि दयानंद का जब आविर्भाव हुआ था तो जनमानस में स्त्रियों को पढ़ने की कोई अनुमति ही नहीं थी, चूल्हा चौकी घर गृहस्थी तक ही उनका क्षेत्र कार्यक्षेत्र परिसीमित था, पढ़ने पढ़ाने का कोई काम ही नहीं था। तो उन्होंने उसका खंडन किया है, और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण। महानुभाव, पूरा समाज यदि किसी बात को मान रहा है उसके ठीक विपरीत जाकर के सत्यवाद को मनवाने के लिए कितना बड़ा साहस चाहिए। वेद के प्रकाश में ऋषि दयानंद ने वो साहस दिखलाया और उन्होंने लिखा अथर्ववेद का प्रमाण दे करके, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या यानी कुमारी ब्रह्मचर्येण यानी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान युवानम पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को विन्दते प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। फिर प्रश्न किया, क्या स्त्रीलोग भी वेदों को पढ़ें? उत्तर दिया, अवश्य। देखो श्रौत सूत्रादि में इमं मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात इस यज्ञ में इस मंत्र को स्त्री पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सकें? भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी, यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी यानी मूर्खा, और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान यानी मूर्ख हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहेगा, फिर सुख कहाँ? इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके, तथा राजकार्य न्यायाधीशत्व आदि गृहाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार से कभी ठीक संपन्न नहीं हो सकते। आगे डिंडिम घोष करते हैं महर्षि दयानंद, देखो आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी तरह से जानती थीं। क्योंकि जो न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती थी और युद्ध क्यों कर सकती थी। इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या और क्षत्रिया को सब विद्या और युद्ध कला तथा राज विद्या विशेष, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, इसी बात को अगले श्रव्य कणिका में भी आगे बढ़ाएंगे। ओम।